താണം ഹേണമോ സിദ്ധാണം നമോ ആര്യാണം ഹേണമോ ഉപജ്യായാണം നമോ ലോയേ സർവസാഹുണം ഏസോ പഞ്ചണമോ യാരോ സർവപാവപ്രനാശനം മംഗളാണം ച സർവേഷു കർമ്മമുഹി മംഗളം ചത്താരി മംഗളം അരിഹന്താ മംഗളം സിദ്ധാമംഗളം സാഹുമംഗളം കേവലീപണത്തോദം മംഗളം ചത്താരി ലോകുത്തമാ അരിഹന്താ ലോകുത്തമാ സിദ്ധാ ലോകുത്തമാ സാഹു ലോകുത്തമാ കേവലീപണത്തോദം മോ ലോകുത്തമോ ചത്താരി ശരണം പവജാമി അരിഹന്തേ ശരണം പവജാമി സിദ്ധേ ശരണം പവജാമി സാഹു ശരണം പ്രവജാമി കേവലീപണത്തം നമ്മം ശരണം പ്രവജാമി മോക്ഷമാർഗസ്യ നേതാരം ഭേതാരം കർമ്മഭൂവ്രതാം ജ്ഞാതാരം വേശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധേ വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധേ विगत कुछ दिनों से अपनी चर्चा यहाँ ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों के बारे में चल रही है। ये सभी द्रव्य कर्म हैं और द्रव्य रूप से वे पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ में आकर बंधते हैं। भाई जो पुद्गल द्रव्य रूप हो ना उनका नाम है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म माने जो द्रव्य रूप से बंधे। द्रव्य कौन सा? कि पुद्गल द्रव्य। ये छह द्रव्य हैं और छह द्रव्यों में एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य भी है। ये द्रव्य कर्म पुद्गल की पर्याय है। ऐसा लगता है ना हमारे को कि कौन सा द्रव्य है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, ये द्रव्य कौन सा है, पदार्थ कौन सा है? ये तो भाव कर्म तो जीव की पर्याय है। राग द्वेष आदि परिणाम वो मेरे हैं, मेरी पर्याय है, मेरी अवस्था है, जो भाव कर्म है। नौ कर्म वो संयोगों की अवस्था है, बाहरी पदार्थ। और जो द्रव्य कर्म है वो द्रव्य कर्म भी है तो पुद्गल की अवस्था, बट दिखती नहीं है। कर्म हमें नहीं दिखते। आप सोचिए यदि ये कर्म हमारे को दिखने लग जाए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाए, लेकिन दिखते नहीं है। हमें पता नहीं लगता कि कर्म बंध रहे हैं। हमें पता नहीं लगता कि कर्मों में परिवर्तन हो रहा है। द्रव्य कर्म के उदय से नौ कर्म और नौ कर्मों के मिलने पर उनमें किया अपनापन या राग, उससे उसका नाम भाव कर्म, और उससे फिर नवीन कर्मों का बंधन जिसका नाम द्रव्य कर्म। इस तरह से श्रृंखला चलती रहती है। अपन ने ये चर्चा विगत अनेक दिनों में की है और आठ कर्मों की इस चर्चा में हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, इतने कर्मों की चर्चा कर चुके हैं। आज हमारे को प्रकरण पूर्ण करना है। बाकी के बचे हुए तीन कर्म उनकी भी चर्चा आज अपने को यहाँ देखनी है। इन सब कर्मों के लिए अलग अलग उदाहरण दिए गए। कल हम उनके उदाहरणों की चर्चा कर रहे थे और इस संदर्भ में हमने चार कर्मों संबंधी आपको उदाहरण बतला दिए थे। संभवतः आप लोगों को याद भी होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ज्ञानावरणीय पर्दा, दर्शनावरणीय द्वारपाल दरवान, मोहनीय शराबी। आपने उसी क्रम से याद कर लिया, मैंने क्रम बदल करके पूछा। मोहनीय शराबी और अंतराय कर्म है जानकी। अब है एक वेदनीय नाम का कर्म। इस वेदनीय कर्म के लिए उदाहरण मिलता है शहद लिपटी हुई तलवार। यद्यपि शहद अवक्ष है, जैनियों के खाने योग्य नहीं है, फिर भी शहद यदि किसी तलवार पे लगा हुआ हो तो जो कोई व्यक्ति उसे अपनी जीभ से रसना इंद्रिय से चखता है, स्वाद लेता है, तो मिठास का स्वाद भी आता है और जीभ कटने से तकलीफ का अनुभव भी होता है। तो असाता माने दुख रूप वेदन, साता माने सुख रूप वेदन। बस ये साता और असाता जो कर्म कहे हैं ये दुख और सुख के वेदन में निमित्त बनते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर्म नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म, कुछ भी किसी की भी चर्चा कर सकते हैं अपन। जैसे हम बात करें आयु कर्म के संदर्भ में, ज्ञानावरण रसनावरण मोहनीय अंतराय वेदनीय आयु, आयु कर्म क्या चीज है? आयु कर्म से जीवन बनता है, अपनी जो लाइफ है ये आयु। अपन पूछते हैं कि साहब आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू?
64।
तो अब ये 64 आपकी आयु है, तो ये आयु कर्म है। आयु कर्म क्या चीज है?
आयु बंद होता है।
देखिए आयु कर्म जीवन में एक ही बार बंधता है मुकुंद भाई, और जैसे अभी हम कोई आयु कर्म बांधेंगे तो नेक्स्ट भव में कहाँ जाएंगे और कितने टाइम पीरियड तक रहेंगे ये निर्भर करता है आयु कर्म के ऊपर। हम जैसी आयु बांधेंगे ना, जितनी यहाँ बांधेंगे नेक्स्ट भव में उतने टाइम पीरियड के लिए उस अवस्था में हम रहेंगे, ये स्वरूप है, ठीक है। अब जैसे अभी यहाँ कितने टाइम तक रहेंगे हम, इसका क्या क्राइटेरिया है? हम में से किसी को नहीं पता कि हम कितने लंबे टाइम तक रहेंगे, हम कोई नहीं जानते कि हमारे को कितने समय तक जिंदा रहना है। हाँ, लेकिन आयु कर्म के पास में है उसकी कंट्रोलिंग। पिछले जन्म में हम जितनी बांध करके आए थे उतना हमारे को यहाँ काल बिताना पड़ेगा।
हाँ हाँ, कोई कौन सा जन आएगा जब ठीक हो जाए आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन वो आयु उस समय जिसके हमें जब आपका है 55 साल के बाद कब आपका आयु
तो वो तो मैं बोलने वाला हूँ अभी आगे। हाँ, ये तो मैं अभी तो
जन्म की बात कह रहे ना,
हाँ
जन्म में बन जाते तो वो कह रहे थे इसी जन्म में बनते लेकिन 55 साल के बाद बनते।
नहीं 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 ऐसा नहीं है। इस जन्म में जो बनेंगे वो अगले भाव के लिए है ना, पिछले जन्म में बांधा था इस जन्म के लिए, इस जन्म में बंधेगी अगले भाव के लिए। जो आपने 55-60 के अंदर आयु कर्म बांधने की बात सुनी है वो अगले भाव के लिए है। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी तो मैंने आयु कर्म शुरू किया है। ये लाइफ के लिए नहीं, नेक्स्ट लाइफ के लिए, इस जन्म के 1/3 जब बचेगी तब वो समय आएगा जिस समय कर्म बांध पाएगा, इस लाइफ के लिए नहीं। आयु कर्म बंधता कैसे है? अभी पहले बिल्कुल बहुत स्टेप बाय स्टेप चले अपन, बिल्कुल धीरे धीरे। आपने जो कुछ भी सुन रखी है वे बातें भी आएगी, कुछ शंका होगी वे भी आएंगी, और फिर भी जब मैं पूरा करूंगा तब और पूछ लूंगा कि आपको कुछ पूछना हो तो और बोलिए। आयु कर्म ये ठीक वैसा ही कर्म है जैसे और कर्म है, बस थोड़ा सा फर्क है। सभी कर्म हर समय बंधते रहते हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ज्ञानावरणी भी बंध रहा है, दर्शनावरणी भी बंध रहा है, मोहनीय अंतराय वेदनीय नाम गोत्र, ये 7 कर्म ऐसे हैं जो हर समय बंधते रहते हैं इस जीव को, नॉन स्टॉप 24 घंटे अनादि काल से बंध रहे हैं। और जब तक हम संसार दशा में रहेंगे तब तक 24 घंटे लगातार ये 7 कर्म बंधते रहेंगे। अब आयु कर्म एक स्पेशल है, वो जीवन में एक ही बार बंधता है, उदय तो चलता है कंटिन्यू। हम यहाँ बात कर रहे हैं आपसे बंधन के बारे में, दोनों अलग अलग चीज है, आयु कर्म का बंध और आयु कर्म का उदय। आयु कर्म का उदय जब तक रहेगा तब तक जीवन रहेगा। हमारी लाइफ कब तक चलेगी? जब तक हमारे आयु कर्म का उदय होगा। मनुष्य आयु कर्म का जब तक उदय होगा तब तक हमारा ये जीवन चलेगा, और जब हमारे मनुष्य आयु कर्म का बैलेंस खत्म, अगले भाव में फिर दूसरी आयु शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो दूसरी शुरू होगी ना, वो यहीं से बांध करके लेकर के जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, यदि यहाँ से बांध करके नहीं ले जाए, कल्पना करें, तो कौन सी जगह जाएगा? आयु ही नहीं बंधी, मोक्ष हो गया उसको। इसलिए जीवन पूरा होने के पहले पहले, मृत्यु होने के पहले पहले आयु नियम से बंध जाती है अगली भाव के लिए। ठीक है, अब जैसे पिछला तो अपन ने बांध लिया था, तो पिछली तो क्या बात करें, वर्तमान में हम भोग ही रहे हैं, भुगत रहे हैं। हमारे मनुष्य आयु कर्म का उदय चल रहा है, आगे के बारे में विचार करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। हमारे वर्तमान परिणामों से अगले जन्म की आयु बंध सकती है, लेकिन कब बंधेगी क्या मालूम, कब बंध जाए। उसका नियम ये कहा है कि जितनी वर्तमान में है आपकी, आपको नहीं मालूम, मान लीजिए वर्तमान में हमारी 60 वर्ष की आयु हम लेके आए हैं, 90 मान लीजिए, 60 से ऊपर बहुत लोग हैं। नब्बे वर्ष की उम्र हम लेके आए हैं, ठीक है। अब हमारे आयु कर्म कब बंधेगा लाइफ में, तो शास्त्र में कहा है त्रिभाग करो, त्रिभाग में आयु कर्म बनता है। ये तो सैद्धांतिक वाक्य है, त्रिभाग में आयु कर्म बनता है। त्रिभाग माने तीन हिस्से, तीन हिस्से करेंगे तो क्या होंगे, 30-30-30, 30-30-30। अब इन तीन हिस्सों में से त्रिभाग में तीसरे वाले भाग में दो भाग पूरे हो जाने पर तीसरा भाग जब शुरू होगा, तो पहले समय में चांस बनेगा आयु कर्म के बंधन का। मतलब 60 वर्ष पूरे होते ही, 60 वर्ष पूरे होते ही, 60 में तो दो पार्ट पूरे हो गए, अब इसके बाद आगे वाला जो सेकंड, आगे वाला जो समय आएगा, उस समय में वो तीसरे का फर्स्ट समय है, थर्ड पार्ट का, उसमें हमारे जो भी परिणाम होंगे उन परिणामों से अगले जन्म की आयु बंध जाएगी। क्या आफ्टर 60? अभी अभी सुनिए तो सही। देखिए आप, हमने 90 का 30 एग्जांपल लिया, थर्ड तीसरा भाग, हो सकता है किसी की 70 हो सकता है किसी की 80 हो सकता है 75 हो, 72 हो, राउंड फिगर में थोड़ी ना होगी। नहीं, बर्थडे पर तो कोई जाता नहीं, तो जितनी आयु होगी समझ लो आप, उसका 1/3 करना है। जितना हमारी वर्तमान आयु है उसका 1/3 करना। क्या है, सब कर्म अपने आप कर लेते हैं क्या? हमने हमारे पास में चांस कहाँ है, हम कितनी लेकर के आए थे और कब आयु कर्म बंधन का चांस पड़ गया, और कौन से परिणामों में आयु कर्म बंधेगी हमें नहीं मालूम। इसलिए हम तो भावना ये बातें हैं, हर समय अपने भाव अच्छे रखो, अलर्ट रहो, सावधान रहो। आप क्या पता कौन से समय आयु कर्म का बंधन हो जाए, और हो सकता है उस आयु कर्म के बंधन में हम त्रियंच आयु बांध ले, गधे से नफरत करते हैं, गधा बन जाए, बिल्ली बन जाए, चूहा बन जाए, खरगोश बन जाए, छिपकली बन जाए, कैसी आयु बांधेंगे, त्रियंच बनेगी कि देव बनेगी, नारकी बनेगी कि मनुष्य बनेगी, क्या पता कौन सी आयु कर्म बांध लेंगे हम। नहीं, क्या चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने से कहाँ कुछ होता है बताइए? हमारे चाहने से तो कुछ भी नहीं होता। आपके घुटनों में दर्द रहता है थोड़ा थोड़ा, आप चाहते तो नहीं है, क्या करें? कुछ भी नहीं चलता। हमारी इच्छा का अनुसरण जगत का कोई पदार्थ नहीं करता, बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं चलेगी। तो क्या हुआ, जैस अब वो त्रिभाग के अंदर चांस पड़ा था, बस वो उतने समय में, एक समय ऐसा आया उस समय में जो आपके थे लॉक फिनिश। अब आयु कर्म का कुछ लिंक नहीं है। अब जो बंधनी थी तो बंध गई त्रिभाग में। मान ली किसी व्यक्ति की जो भी है 120 साल की उम्र है, तो 80 साल की उम्र में उसका चांस पड़ेगा। किसी की 60 है तो 40 साल की उम्र में चांस पड़ेगा। अब क्या पता हम कितनी लेकर के आए हैं, और कब हमारा वो आयु कर्म का त्रिभाग पड़ जाए, और कब हमारे आयु कर्म का बंधन हो जाए। इसलिए हर समय सावधान रहने की जरूरत है। अब वो जो चांस आया, चांस की बात है कि उसमें आयु कर्म का बंधन नहीं हुआ। मान लीजिए 90 का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे हम, 60 वर्ष की उम्र में आयु कर्म के बंधन का अवसर मिला और उस समय आयु कर्म का बंधन नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब नेक्स्ट चांस आएगा बचे हुए के त्रिभाग में। बचे हुए के त्रिभाग में का मतलब 30 बच गई है, अब 20 वर्ष बाद में वो एक समय आएगा ऐसा जब आयु कर्म का बंधन हो सकेगा, माने 80 वर्ष की उम्र में। उस समय में भी आयु कर्म का बंधन नहीं हुआ बाई चांस, तो अब जितने बच गई हैं 10 वर्ष उसके त्रिभाग में, माने 6 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन कुछ घंटे कुछ मिनट सेकंड, उस समय में चांस पड़ेगा। और फिर भी नहीं हुआ तो फिर एक और चांस बचे हुए के त्रिभाग में। ऐसे 8 चांस मैक्सिमम मिल सकते हैं आयु कर्म बंधन के लिए। तो साहब उदाहरण से तो ऐसा लगता है कि 60 के पहले तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफी लोगों की निकल गई है, मैं तो 60 से कम वालों से बात करता हूँ। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए 50 साल की उम्र में मरना है, 40 साल की उम्र में मरना है, 39 की एज लेकर के यदि कोई व्यक्ति आया है, तो कितनी उम्र में, 26 की एज में उसके आयु कर्म के बंधन का काल आ जाएगा। कोई व्यक्ति 36 साल की उम्र लेकर के आया है तो 24 साल में उसका चांस आ जाएगा। कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र लेकर के आया है तो 20 साल में आयु कर्म का बंधन का समय आ जाएगा उसके। कोई 15 साल की उम्र लेकर के आया है, क्या पता 15 साल के लोग मरते नहीं है क्या? तो 15 साल का यदि कोई व्यक्ति मर गया है, इसका मतलब आयु कर्म के बंधन का चांस उसके 10 वर्ष की उम्र में आ गया था। अब कैसी आयु बांधी, परिणाम कैसे थे आपके? अब यहाँ आयु कर्म किसके कैसा बंधता है उसकी चर्चा भी की है। चारों आयु कर्म के लिए अलग अलग प्रकार के परिणाम बतलाए हैं, कैसे परिणाम और कैसे आयु कर्म का बंधन उमा स्वामी आचार्य ने चर्चा की है तत्कार सूत्र में। एक एक बात और यहाँ थोड़ी सी विचारणीय है कि आयु कर्म एक बार बंध जाने के बाद बदलता नहीं है। आप कितना भी धर्म कर लें, कितना भी पाप कर लें, मतलब किसी व्यक्ति ने देवायु बांध ली तो वो सोचे कि अब कितना भी पाप करें तो नरक में नहीं जाएगा वो, नहीं। जो भी हमारी लाइफ में एक बार चांस पड़ेगा वो, मतलब समझिए एक समय का परिणाम, वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड कैसा होगा क्या पता। इसलिए हर समय अच्छे परिणाम रखो तो मैक्सिमम यदि हमारा काल अच्छे में बीतेगा, अच्छे परिणामों में यदि हमारा समय बीतेगा, तो मान के चलना चाहिए कि आयु कर्म भी अच्छा बनेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मरते समय में नमोकार मंत्र कान में सुना दो तो बहुत सुधर जाएगा। ऐसा होता है साहब? कई बार सुना है हमने ऐसा लोगों से, और कई घटनाएं हमने शास्त्रों में ऐसी पढ़ी है कि मरते समय कान में नमोकार मंत्र सुना दिया और उसका भाव सुधर गया। जैसे जीवंधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को, एक कुत्ता बहुत मर रहा था, उसके कान में जाकर ओंकार मंत्र सुना दिया और वो कुत्ता मर करके देव बन गया, भाव सुधर गया उसका। पद्मरुचि नाम का सेठ था एक, रामचंद्र जी की बात है, जो बाद में राम बने, मरणासन्न बैल को उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, उसका भाव सुधर गया। राजकुमार पार्श्वनाथ ने जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, वे मर के धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। कितनी घटनाएं अपने पढ़ी है ऐसी शास्त्रों में, कई मिल जाएगी इस प्रकार की घटनाएं। उन घटनाओं की सत्यता में बिल्कुल शंका नहीं है, वे सब बातें सच है, लेकिन इससे ये नियम कहां से बना लिया कि कोई हमारे कान में नमोकार मंत्र सुनाएगा और हम देवगति में चले जाएंगे, ये नियम तो नहीं है ना। फल तो परिणामों का लगता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इससे भाव सुधर जाता है, तो जब थोड़ा सा कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो नमोकार मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। हमने तो ऐसा भी देखा है मुकुंद भाई, एक व्यक्ति बीमार पड़ गए और घर वाले लोगों ने थोड़ा सा पाठ वाठ बोलना चालू कर दिया, नमोकार मंत्र बोलना चालू कर दिया, नाराज होके बिगड़ करके ऐसा बोले, अरे बंद करो मर नहीं रहा हूं। अभी कौन सा मरने वाला हूं मैं, अब क्या करो आप, वो परिणाम कहां से लाओगे आप, फल परिणामों का लगेगा। नमोकार मंत्र कान में पड़ने पर यदि आपके परिणाम संभल गए तो निश्चित रूप से अच्छा भाव मिलेगा, और यदि परिणाम नहीं संभले तो आपको भाव अच्छा नहीं मिलेगा। तो फिर साहब जैसे आयु कर्म बांधा होगा उसका क्या होगा, कि परिणाम भी उसी हिसाब से होंगे। कई बार आपने ऐसा वाक्य सुना होगा, जैसी गति वैसी मति। क्या मतलब है इसका, कि जैसा कर्म आप बांध चुके हैं ना, जो आयु कर्म आपने बांध लिया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नरक आयु बांध लिया, अब आप उसको रोजाना यहाँ आने की कहो तो उसको परिणाम ही नहीं आते, कहां से आएंगे। जैसा आयु कर्म बन गया है उसको वैसे ही परिणाम आएंगे। दोनों चीजें, अब देखो अब दूसरी चीज, अरे दोनों बातें अभी सुनिए तो सही आपसे, जैसी गति वैसी मति और जैसी मति वैसी गति, ये दोनों चीजें हैं। अभी दोनों कैसे हो सकता है, कि कभी तो मति अनुसार गति होती है, कभी गति अनुसार मति होती है, ये दोनों बातें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चलती है। जब तक आयु कर्म नहीं बंधा है तब तक तो जैसी मति वैसी गति, नहीं बंधा है ना आयु कर्म, आपकी जैसी मति होगी। हमने हमसे किसी ने पूछा कि पंडित जी हम कहां जाएंगे मर करके, कि जैसी मति वैसी गति, जैसे आपके परिणाम रखोगे वैसा गति बांधोगे, वैसा आयु कर्म बंधेगा। इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, अच्छे भाव होंगे अच्छी आयु बंधेगी, खोटे भाव होंगे तो खोटी आयु बंधेगी। तो जैसी मति वैसी गति, लेकिन आयु कर्म बंध जाने के बाद जैसी गति बंध गई ना, अब मति उसी के अनुसार चलेगी। आप लाख प्रयास करके भी अपनी मति को बदल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जहां जाना है ना वो नक्की है गया, बुद्धि वैसी चलेगी। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंत समय के परिणामों को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति कहां जाने वाला है। हम हमारे परिणामों से, हमारे परिणाम कौन सी दिशा में बढ़ रहे हैं, इससे हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हमें मर के कहां जाना है। अंत समय है ना, ये इस बात का दर्पण है, आपके फ्यूचर का दर्पण है, वो झलकता है उसमें। वृद्धावस्था में आपके परिणाम विषय भोगों की तरफ दौड़ते हैं, कि अंत समय में आपके परिणाम त्याग की तरफ, संयम की तरफ, वैराग्य की तरफ, स्वाध्याय की तरफ, सत्संग की तरफ, सत्समागम की तरफ दौड़ते हैं। जिनकी होनहार भली होती है उन्हें परिणाम ऐसे आते हैं इधर लगने के, और जिनकी होनहार खूटी होती है उन्हें कितना भी समझाओ उन्हें ये बात जचेगी नहीं, रुचेगी नहीं। कई बार देखा गया है ऐसा, अनेक बार समझाने का प्रयास करो तो नहीं समझ में आवे, और बिल्कुल नहीं समझाए, समझाने वाला नहीं रहे, समझ में आ जाए। मतलब कैसा है होनहार जिसकी, जब जिसको जब बदलना हो। हमने ऐसा ऐसा तक देखा है, 20-20 साल तक किसी को आग्रह करते रहे कि भैया प्रवचन सुनने आओ, स्वाध्याय में आओ, आया करो, तो कभी नहीं आते थे। और जब कहने वाले नहीं रहे, चले गए, तो ऐसी रुचि लगी उनको कि रोज आना शुरू कर दिया। मुझे याद आता है शांतिनाथ स्वामी का वो प्रसंग, 10 भाव पहले की घटना है शांतिनाथ स्वामी की। राजा थे और वे किसी नगर में रहते थे, इकलौता पुत्र था राजा थे कि सेठ थे, बहुत वैभव संपन्न थे, इकलौता पुत्र था। प्रसंग ऐसा बना लाइफ में, स्वयं तो राजा, स्वयं तो श्रेष्ठी, सारे समाज में जगत में उनका नाम यशस कीर्ति, 10 भाव बाद तीर्थंकर बनने वाले हैं। बेटा ऐसा हुआ कि घर में काम करने वाली के ऊपर मोहित हो गया और बोलता है कि पिताजी मैं तो इसी से शादी करूंगा, क्या करें। बहुत समझाया, बेटा अपनी इज्जत का तो ध्यान रख थोड़ा सा, ये उचित नहीं है। एक से एक अच्छी लड़कियों के संबंध तेरे लिए आएंगे कि नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगा, क्या करें। बोलो अब बच्चे नहीं माने तो आप क्या करो। तीर्थंकर होने वाले हैं, बच्चे को खूब समझाया, नहीं समझा, और अंत में जब वो नहीं समझा तो माता पिता ने ये नक्की किया कि भाई हम तो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक चिट्ठी लिखी बच्चे के नाम और रात्रि में जहर खा करके सो गए, मर गए। जो भगवान बनने वाले हैं वो माता पिता, शांतिनाथ भगवान 10 भाव पहले आत्महत्या करके मर गए थे, तीर्थंकर बनेंगे 10 भाव बाद में, ये घटना बर्दाश्त नहीं हो सकी उनसे। देख नहीं सकते हम बेटे को ऐसा, ये तो हमसे नहीं देखा जाता। बेटा ठीक है, तेरे को ऐसा जचता है तो ऐसा ही कर, नहीं हम नहीं देख सकते, इसलिए हम आत्महत्या करते हैं। सारी संपत्ति तेरे नाम है, तू है ना, जैसे जैसे जो करना तेरे हो। तो मर गए। सुबह उठा तो उसने देखा माता पिता का स्वर्गवास हो गया, पास में चिट्ठी लिखी हुई थी, चिट्ठी को पढ़ा, पढ़ करके उसके मन में इतना वैराग्य भाव जागृत हुआ कि शादी करना तो बहुत दूर की बात है। उसको उसी भाव में सम्यक दर्शन वैराग्य हो गया और दीक्षा लेके मोक्ष चला गया।
बोलो
बोलो आप।
वो
तो अभी तो
अभी नौ
भाव, उनको अभी 9 भाव ठहरना है। क्या कैसा स्वरूप है, कब कौन व्यक्ति कैसे आयु बांध लेंगे, कब किसको कहाँ जाना है, किसके कैसे परिणाम होंगे। जिसको देवगति में जाना है उसके परिणाम अच्छे, जिसके होनहार भली है उसके परिणाम बदल जाते हैं, जिसके परिणाम अनेक प्रयास करने पर भी नहीं बदल रहे हैं इसका मतलब होनहार खोटी है। क्या पता कब बदल जाए, कब होनहार भली हो जाए, क्या हमारे हाथ में है। मतलब हम यदि यहाँ तत्वज्ञान सुनने के लिए आए हैं, जिनवाणी सुनने के लिए आए हैं, तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है इस जगत में। आप मानो चाहे न मानो, लेकिन मैं आपको सर्टिफिकेट लिख करके दे सकता हूँ कि आप यहाँ मियामी, यहाँ फ्लोरिडा में रहने वाले लोगों में बहुत ज्यादा भाग्यशाली लोगों में से एक। तो मिल कान में पढ़े नहीं लोगों को, सुने नहीं है बातें, आप कहाँ समय निकाल करके कितना दूर दूर से। मैं तो जब देखता हूँ आप लोगों का पुरुषार्थ तो मुझे लगता है 100 किलोमीटर दूर से आते सुनने के लिए। मामूली बात है 100 किलोमीटर दूर से आना, एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटे ड्राइव करके आए यहाँ और फिर रुचि पूर्वक सुने, ये बहुत तीव्र पुरुषार्थ का काम है। ऐसे पुरुषार्थ की लोग हमारे इंडिया में नहीं मिलते।
हाँ
आप देखो ना, मियामी की बस्ती कितनी है आपके यहाँ, 25 लाख। मियामी की बस्ती 25 लाख है, 2.5 मिलियन, इतने लोग रहते हैं यहाँ। 25 लाख लोगों में से 25 लोग भी नहीं मिलेंगे आपको स्वाध्याय करने वाले, माने लाखों में एक तो आप वैसे ही हैं। जब हम कहते हैं आप सैकड़ों में एक हैं, तो ये कॉलर ऊंची करता है, हम कह रहे हैं लाखों में एक हो आप। आप जैसे भाग्यशाली कहाँ मिलेंगे, آپ کے آس پڑوس میں یہاں سے باہر نکلتے ہیں ٹریفک میں جام میں ہزاروں لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں, کتنوں کو فرصت ہے میں آتما ہوں کہ نہیں ہوں, میں ہوں کون یہ جاننے کی فرصت کس کو ہے؟ میں کون ہوں, آیا کہاں سے اور میرا روپ کیا, سمبند دکھ میں کون ہے, سیکرت کروں پریہار کیا, اس کا وچار وویک پوروک شانت ہو کر کیجیے تو سرو آتمک جان کے سدھانت کا رس پیجیے. وچار کرو میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے, اگلے گاؤں میں کہاں جانا ہے, یہ آیو کرم کے بارے میں وچار تو کرو ایک بار. آپ کیسا آیو کرم بن گیا, ارے غلطی سے یدی پرینام بگڑے ہوئے میں آیو کرم بن گیا تو مفت میں مارا جاؤں گا, میں تو نرک رینج میں جانا پڑ جائے گا. ہر سمے سنبھال کر کے رہو, کیا پتا کب آیو کرم بن جائے. انت سمے کے پرینام ہو سکتا ہے کسی کے تریواگ میں نہیں بن رہی ہو, تو بنتے بنتے وہ آٹھواں چانس جب پڑے گا تب تک انت سمے آ جاتا ہے مرنے کے انتر مورت پہلے, اور اس سمے کوئی سہیوگ ایسے مل جائے کہ کان میں نموں کا منتر سنانے والا مل گیا, کوئی بھکتی سنانے والا مل گیا, کوئی استوتی سنانے والا مل گیا, کوئی اپورو اوسر سنانے والا مل گیا, تو سمجھ لیجیے کلیان ہو گیا اپنا. لیکن تو بھی آپ نے یدی جیون بھر سنا ہوگا تو آپ کو انت سمے میں وہ سن کر کے رس آئے گا, نہیں تو انت سمے میں وہ سن کر کے کنٹالا آئے گا کہ کیا سناتے ہیں یار, یہ ابھی بھی چین نہیں ہے ان کو, ایسا کہیں گے. میں مر رہا ہوں اور ان کو پھر بھی ابھی بھی وہی دکھ رہا ہے. دیکھو آپ انت سمے میں آپ دھرم جان کی چرچا کرو گے اور وہ ڈالر کا حساب کتاب لگائے گا, وہ دین لین کا حساب کرے گا, وہ بٹوارے کا حساب کرے گا, وہ سوچے گا پیچھے سے کیا ہوگا, وہ سوچے گا کہ میں تین نمبر تو بتا جاؤں, نہیں تو جائیں وہیں جانتے تین نمبر, تین نمبر نہیں جانتے آپ لوگ. ایک نمبر وہ جس کا ہمیں بھی پتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی پتا ہے, جو بالکل ایک نمبر بھائی کھاتے حساب ٹیکس دیتے ہیں اپن, وہ سب ایک نمبر میں بھولتے ہیں اپن ایک نمبر. اور دو نمبر میں وہ جس کا ہمیں اور پریوار کو تو پتا ہے لیکن گورنمنٹ کو پتا نہیں ہے, وہ دو نمبر ہے. اور تین نمبر وہ جس کا نہ گورنمنٹ کو پتا ہے نہ پریوار والوں کو پتا ہے, بس ہمیں ہی پتا ہے. کچھ نہ کچھ ایسا تین نمبر بھی ہوتا ہے کیا, جس کا صرف مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے کتنا کہاں کہاں کیا کیا کر رکھا ہے, نہ وائف کو پتا ہے نہ بچوں کو پتا ہے. اب انت سمے جب آتا ہے تو اس کو وہ تین نمبر دکھنے لگتا ہے, اس کو دے رکھا ہے اتنا پیسہ, اس کے پاس میں اتنا رکھا ہوا ہے, وہ وہاں لاکر میں ہے, وہاں بھی میرا اکاؤنٹ ہے, تو ان کو نہیں بتاؤں گا تو وہ بینک والے آ جائیں گے, نہیں رہ جائے گا, کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہوگا, وہ دینے کے لیے نہیں آئے گا, اس سے اتنا ڈالر مانگنا ہے, اتنا ملین اس سے لینا ہے. آپ دیکھو کتنے دماغ میں من میں سنکلپ وکلپ چلتے رہتے ہیں, کس کے چلتے ہیں, جس کی ہونہار پھوٹی ہے. نرک آیو کے آشرم کا کارن کہا ہوا سوامی آچاریہ نے, ابھی میں نے کارن پڑھے نہیں ہے آپ کے سامنے, بہوا رمب پریگرہتم نارکس سے آیوش ہے, بہت آرمب اور بہت پریگرہ ہے. صاحب زیادہ آرمب پریگرہ والے لوگ نرک میں جائیں گے, نہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں, غریب ویکتی سب سورگ میں جائیں گے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں. پریگرہ زیادہ ہونا کہ نہیں ہونا, سمپتی کم ہے کہ زیادہ ہے, اٹ ڈیپینڈ آن ویدنی کرم. ساتا کا ادے تھا, میں کیا کروں یدی میرے پاس سمپتی زیادہ ہے تو میرا کیا قصور ہے, ہے ادے سے پورو میں باندھا تھا اور ورتمان میں مل رہا ہے. کنتو بہت آرمب پریگرہ رکھنے کا بھاو, اس میں آسکتی, میں اور جوڑوں, میں اور کماؤں, میں اور اکٹھا کروں, یہ جو تیور بھاو ہے بہت آرمب پریگرہ رکھنے کا بھاو نارکس کے آیوش ہے, نرک آیو کرم کے آشرم کا کارن بنتا ہے. سوچ لیجیے آپ, تو ایسے لگتا ہے ہمارے کو کہ اسی اس میں لگے رہتے ہیں, ہم تو ہم جوڑنے ہی جوڑنے میں لگے رہتے ہیں, بھوگنے کی تو ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے. کئی بار ایسا پرسنگ بنیں گے بنتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں کہ جوڑتے ہی جوڑتے رہتے ہیں, بھوگنے کا تو موقع ہی نہیں مل پاتا.
جب ہمارا ایشیا کرم بنتا ہے
गति नक्की हो जाती है। गति नाम कर्म के भेदों में है, लेकिन वो गति नक्की हो जाती है। अभी गति सब तरफ की बन रही है, गति नाम का एक नाम कर्म है, वो सब प्रकार की बन रही है अभी, लेकिन आयु कर्म जिस क्षण बन जाएगा उसके बाद में गति निश्चित हो जाएगी। अब हमारे को उसी गति में जाना है। तो मेरे साहब ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या पता पंडित जी, आयु कर्म हमने बांध लिया हो तो, हमने तो अभी आना शुरू किया है सत्संग में, अब यदि आयु कर्म पहले बांध लिया होगा तो क्या होगा? तो चिंता की बात नहीं है, सत्संग में आना शुरू किया है इसका मतलब बंद गई होगी तो अच्छी बंदी होगी तो यहाँ के प्रणाम आते हैं, और यदि नहीं बंदी होगी तो भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सत्संग में आना शुरू कर दिया, जैसी मति वैसी गति, इसलिए यहाँ आना किसी केस में गड़बड़ नहीं है। हाँ एक बात आप ये कह सकते हैं कि पंडित जी, यदि पहले मान लीजिए हमारी नरक आयु बंद गई हो, अब क्या लाभ होगा उससे, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। कि नहीं, आयु कर्म में संक्रमण तो नहीं होता, माने नरक तो जाना पड़ेगा कि, पर उसमें वर्तमान परिणामों से उत्कर्षण भी हो सकता है और अपकर्षण भी हो सकता है। हाँ, उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने यदि यहाँ से नरक आयु कदाचित पहले बांध ली हो सातवें नरक की, आपके वर्तमान के उज्जवल परिणामों से वो सातवें नरक से घट करके तीसरे नरक में, पहले नरक में एक सागर की 25,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष तक की भी रह सकती है। ये बहुत बड़ी ताकत है। हमने यदि मान लीजिए देव आयु बांध ली है तो क्या होगा, कि यदि भवमेत्रिक की बांधी थी तो वैमानिक में जा सकता है, उत्कर्षण हो सकता है उसका। कम आयु बांधी थी तो ज्यादा हो सकती है। त्रियन की आयु बांधी किसी व्यक्ति ने तो निगोद में भी जाए और श्रेणी पंचन रिगाय भैंस भी हो गए। अरे बहुत फर्क है उसमें, बहुत उत्कर्षण अपकर्षण है। एक इंद्री भी त्रियंक है, दो इंद्री भी त्रियंक है, तीन इंद्री भी, पंचेंद्री तक सभी त्रियंक है। श्रेणी पंचेंद्री भी तो होते हैं त्रियंक। तो नरक आयु के आश्रव का कारण बतलाया गया बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को, और त्रियंक आयु के आश्रव का कारण बतलाया गया माया त्रियग यौनस्य, मायाचार के फल में त्रियंक गति की प्राप्ति होती है। छल मायाचार, मायाचार में परिणाम तिरछे होते हैं ना, आड़े तिरछे परिणाम होते हैं हमारे मायाचार की ऐसी दशा है। अब ये आड़े तिरछे परिणाम होते हैं तो त्रियंक में आड़ा शरीर मिल जाता है। हम जैसे खड़े हैं दो पैर पर और दोनों हाथ हमारे सीधे हैं, त्रियंकियों का कैसा शरीर है? आड़ा शरीर है। तो आड़े तिरछे परिणाम किए तो तिरछी गति की प्राप्ति हो जाती है, तिरयक तिरछी गति की प्राप्ति हो गई। इसलिए जो जीव त्रियंक गति में नहीं जाना चाहते हो वे मायाचारी और छल रूप परिणाम न रखे। जो जीव नरक में नहीं जाना चाहते हो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव भी ना रखें। मनुष्य आयु के आश्रव के क्या कारण है? अल्प आरंभ परिग्रह मनुष्य आयु से स्वभाव मार्दवम से स्वभाव की सरलता, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव, संतोषी फिर सुख पावे संतोषी प्राणी, हृदय का जो ये संतोष है, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, ये आपकी सरलता है, ये आपके मनुष्य आयु कर्म के आश्रम का कारण हो सकता है। और इस मनुष्य आयु कर्म के साथ साथ यदि परिणाम और उज्जवल यदि आपके होते हैं, व्रत लेने के भाव आते हैं, संयम से रहने का भाव आता है, तो वो समझ लीजिए आप देवायु के आश्रम का कारण है। ठीक है ना, ये सब आयु कर्म के आश्रम के कारण मैंने आपको यहाँ बतला दिए। आज देवायु के आश्रम के कारण बतलाते हुए लिखा है सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। जो संयम के साथ में वर्तने वाला राग है वो देवायु के आश्रव का कारण बन जाता है। तो इस तरह से ये चारों प्रकार के आयु के संदर्भ में अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की है। तो सावधान रहने की जरूरत है, आयु कर्म कभी भी बन सकता है। इस भाव में तो जो हो गया तो हो गया, लेकिन अगला भाव तो ना बिगड़े। हम वर्तमान के बुरे परिणामों से अगला भव बिगाड़ रहे हैं। भव ना बिगड़े इस बात की सावधानी के लिए आयु कर्म की बात कही। अब इस आयु कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है एक कर्म जिसका नाम है नाम कर्म। आयु कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है काठ के यंत्र का, काठ का घोड़ा। पुराने समय में जानवरों को पकड़ने के लिए जंगल में कुछ एक लकड़ी का ऐसा यंत्र सा लगा देते थे कि कोई जानवर दौड़ता हुआ उसने पैर रखे और एकदम वो बंद हो जाता था, फट लॉक लग गया उसमें, अब वो बंद गया उसमें। तो ये आयु कर्म भी इसी प्रकार का है जो फिक्स हो गया, अब तेरे को वहां जाना ही पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बुद्धिमान में उत्कर्षण अपकर्षण, वर्धमान में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है और बुद्धिमान में ये बातें संभव नहीं है। कदाचित मनुष्य त्रियंश कर्म भूमि वालों में उदीर्णा जरूर हो जाती है, अपवर्तन हो जाता है। चलिए नाम कर्म क्या चीज है। नाम कर्म से मिलता है शरीर, शरीर संरचना, ये नाम कर्म का काम है। कैसा शरीर मिले बोलो। अब सबको शरीर सुंदर चाहिए, कैसे भी हो, लेकिन हमारी कोशिश ये लगती रहे चलती रहती है कि कुछ ना कुछ ऊपर से हम ऐसा लगाएं, कुछ पॉलिश करें कि जिससे ये चमके, ये शाइनिंग दिखे। बट लेकिन ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं भाई साहब, इसका कॉन्टेक्ट तो नाम कर्म के पास में है। आप सोच रहे हैं कि शरीर मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से होगा ही नहीं। शरीर की एक एक अवस्था, एक एक अंग अंग और अंदर की शक्ति, ताकत, हड्डियां, सहनन, ये सब का सब नाम कर्म के ऊपर निर्भर करता है। एवरीथिंग, सबसे बड़ा क्राइटेरिया है नाम कर्म का। 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, 93 उत्तर भेद हैं, जिसमें आवाज कैसी होना, स्वर कैसा होना, यशस्वी, प्रशंसा, अपमान, निंदा, सब नाम कर्म की वजह से है। आंखें कैसी मिलेगी, कान कैसे मिलेंगे, चेहरा कैसा होगा, कलर कैसा होगा, बोलो आप। अपन कभी कभी कहते हैं कि ये तो शरीर का कलर ये कैसा है, बॉडी का कलर जो है वो लगभग एक जैसा होता है। किसी एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की बात करें तो लगभग कलर एक जैसा है, लेकिन तो भी कलर में जो विविधता है ये नाम कर्म के कारण है। कितने दिन गोरा रहेगा और कितने दिन बाद में वो जो गोरापन है वो ढल जाएगा, कितने दिन बाद में, एक एक क्षण क्षण की अवस्था जो हो रही है ये सब नाम कर्म के ऊपर निर्भर है। ये ऐसा कॉन्ट्रेक्टर है, ये ऐसा ठेकेदार है जिसने पूरी शरीर व्यवस्था का ठेका लिया हुआ है नाम कर्म ने। ये नाम कर्म रूपी बिल्डिंग कैसी बनेगी, कि जैसा हमने पूर्व भाव में नाम कर्म बांधा होगा, जैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा ना, वो कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि देखो भाई पहले नक्की कर लो आप, जो कुछ भी हमारी डील फाइनल हुई है, मेटेरियल क्वालिटी ये वो सब, ये चीज ऐसी लगेगी, इतनी मंजिल का मकान होगा, इतने बेडरूम होंगे, इस जगह पर ये चीज आपको चाहिए, हर चीज नोट डाउन रिटर्न में है सब, और इन सब के हिसाब से इतना चार्जेस लगेगा और सब डील फाइनल हो गई। अब उसके बाद में आप ये कहो कि नहीं नहीं एक वॉशरूम यहाँ बन जाए तो अच्छा रहेगा, यहाँ तुम अब मत बोलो बीच बीच में, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। अब हो गया ना सब कुछ, सब नक्की हो गया, सब फाइनल कर दिया, पैसे दे दिए, काम चालू हो गया, हमने काम चालू कर दिया। अब ऐसे बीच बीच में नहीं चलेगा कि यहाँ एक एसी लगाओ, यहाँ ऐसा करो, या इसमें इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, ये सब तुम्हारे जैसे तो बाद में करते ना, जो कुछ भी होगा मेरे से जो डीलिंग हुई है उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। माने ये जो नाम कर्म है, हर व्यक्ति, कितने लोग हैं हम लोग, सबकी आवाज एक जैसी नहीं है। फोन पर हम आवाज सुनते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं फोन, अरे आप बोल रहे हैं, ये कैसे पहचान लिया आपने, शक्ल तो नहीं आ रही है, कैसे पहचाने, आवाज भी अलग है। उस वॉइस की तेजी, मंदता, क्लियरेंस, ये सब एक भाषा नाम कर्म है। क्या स्वर नाम कर्म है, सुस्वर के दुस्वर, हम गला अच्छा करने के लिए क्या खाएं, कोकिल कंची, उससे गला अच्छा होता है, क्या लेते हैं आप? लेते हैं कुछ? देखो हम कितने प्रयास करते हैं, दांत कैसे रहें, बाल कैसे हों, सबके शरीर में बाल हैं, सबके सर में, सबके बालों की संख्या बराबर नहीं है, सबकी आंखों की सामर्थ्य बराबर नहीं है, क्षयोक्षम बराबर नहीं है, सबका वजन बराबर नहीं है। मैं कहता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बारी बारी से आप तोल करके देख लो, आप कांटे पर वजन बराबर नहीं आएगा, दो व्यक्तियों का वजन बराबर नहीं होगा। जैसे आप बराबर कहेंगे ना, वो बराबर बहुत स्थूल होगा जिसमें 1000 ग्राम तक ऊपर नीचे होता है। आप भी 60 किलो के, हम भी 60 किलो के। अब क्या 60 किलो, 600 ग्राम ज्यादा है, किसी का 300 ग्राम कम है, किसी का 200 ग्राम ज्यादा है, किसी का 10 ग्राम कम है, 15, कितना फर्क है। प्रति समय परमाणुओं का आना जाना चल रहा है, उसमें नाम कर्म का योग है। हर समय अनंत परमाणु इस शरीर से बाहर निकल रहे हैं और हर समय अनंत परमाणु इस शरीर में आ रहे हैं। प्रति समय ऑटोमेटिक ऐसा चल रहा है, जब आने वाले परमाणु ज्यादा होते हैं और निकलने वाले कम होते हैं तो वजन बढ़ जाता है। जब परमाणु ज्यादा निकलते हैं और ग्रहण कम किए जाते हैं तो कमजोर हो जाता है, वजन कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। उसमें भी फर्क पड़ता है, लेकिन हमने जो खाया है उसका परिणाम कैसा होगा, गले से नीचे उतरने के बाद में अब हमें तो पता नहीं है उसका क्या होने वाला है। लेकिन एक एक ग्लास पोषण करता है आंखों को, नाक को, बाल को, कान को। नाक कैसी होगी? सबकी नाक एक जैसी नहीं है, लेकिन नाक तो नामकर्म की वजह से मिली हमारे को, घ्राण इंद्री नामकर्म की वजह से। इंद्री नामकर्म है ना, कर्ण इंद्री नामकर्म है, घ्राण इंद्री नामकर्म है। अब ये जो नाम कर्म के उदय से हमारे को संरचना मिली, इंद्रिय नाम कर्म, पांच भेद है उसके, स्पर्शन इंद्रिय नाम कर्म, सबका स्पर्श एक जैसा नहीं होगा। जिन लोगों के आंखें नहीं है वो लोग, उनका क्षयोक्षम कई बार ऐसा होता है कि वो आपको छू करके पहचान ले कि कौन है, कौन व्यक्ति है। अरे इतना ही नहीं, कभी कभी तो क्षयोक्षम ऐसा भी होता है कि आहट से पहचान ले कि ये कौन आया है, चाल से पहचान लेवे। हाँ पहचान लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये जो स्पर्श है ये नाम कर्म, रसना इंद्रिय नाम कर्म, सबकी जीभ बराबर नहीं है, घ्राण इंद्रिय नाम कर्म, सबकी नाक एक जैसी नहीं है। कई बार आते हैं इस तरह की पहेलियां आती है न्यूज़पेपर में, अरे इतना सा पार्ट दिखाते हैं, पहचानो कौन से एक्टर की है, पहचान लेते हैं। अरे नाक और होठ देख करके हमने पहचान लिया कौन सा एक्टर है, पहचान हो गया। इसका मतलब सबका फेस अलग अलग है। इस नाम कर्म के लिए शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया है, चित्रकार पेंटर दो फोटो एक जैसी नहीं बना सकता। वो एक फोटो उसने बना दी, अब उसको कहो कि ऐसी कैसी दूसरी फोटो बनाओ, बन ही नहीं सकती है। कितना भी प्रयास करें, ये जो संरचना है ना हमारी बॉडी की संरचना, ये दो व्यक्तियों की आपस में मिल नहीं सकती है। जुड़वा हो मान लो दो बच्चे और एक जैसे दिखते हो तो भी उनमें भी फर्क होगा, क्योंकि दोनों का नाम कर्म अपना अपना है। पहचानने वाले पहचान लेते हैं कि रमेश है या सुरेश है, बोलो ये सीता है या गीता है, कौन है। आपको सीता गीता याद आ रही है ना, पीछे हेमा मालिनी की पिक्चर थी क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डबल रोल दिखते हैं ना, इनमें भी अंतर होगा निश्चित रूप से कुछ ना कुछ। चित्रकार का उदाहरण दिया, मैं कंप्यूटर प्रिंट की बात नहीं करता हूँ, मैं हाथ से बनाने वाले पेंटर की बात करता हूँ। एक पेंटिंग बनाओ, एक चित्र बनाओ, फिर उसको कॉपी करके दूसरा चित्र बनाओ, उसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य मिलेगा। पहले कई बार जो बचपन में मैगजीन हम लोग पढ़ते थे उनमें इस तरह के दो चित्र दिए होते थे और उनमें लिखा होता था नीचे की अंतर खोजिए। आजकल तो वो है ही नहीं समय, अंतर खोजिए, अंतर तलाशिए, उनमें क्या अंतर है। ये बनाते समय इसमें से उसमें कुछ ना कुछ अंतर, साइज लंबाई चौड़ाई कुछ भी। कंप्यूटर में तो बिल्कुल हूबहू निकलेगा, फोटो खींच करके आप उसका प्रिंट निकालोगे तो वैसा का वैसा ही निकलेगा, लेकिन उसमें भी बतलाऊं वैसा का वैसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब, कंप्यूटर प्रिंट कैसे नहीं होगा वैसा का वैसा? कि नहीं, उसमें भी कलर वेरिएशन अवश्य होगा, आप उस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। आंखें काम नहीं करती, स्थूल दृष्टि से हम नहीं देख पाते, उसमें परमाणु अलग हैं और उसमें परमाणु अलग हैं, और सब परमाणुओं का परिणाम अलग अलग है। ये नाम कर्म काम कर रहा है, गति नाम कर्म। कैसा शरीर, हाथी का शरीर मिलना कि चूहे का शरीर मिलना, त्रियंश गति बांधी थी, आयु कर्म था त्रियंश। अब नाम कर्म ने नक्की किया कि ये त्रियंश में कौन से शरीर को धारण करेगा, कितने इंद्रिय होगा, ये नाम कर्म। गति जाति शरीर कैसा होगा, अंगोपांग कैसे होंगे, उंगलियां कितनी होगी, नाखून कैसे होंगे, उंगलियां कितनी होंगी, छह होंगी कि चार ही रह जाएंगी, क्या साइज होंगी उनकी, ये अंगोपांग नाम कर्म है। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन, ये थोड़ा सा झटका लगता है, और ये जो हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है, थोड़ा सा टल्ला लगता है, फ्रैक्चर हो जाता है, बोलो क्या करें। ये नाम कर्म का काम है, जैसा सहनन होगा तदनुसार परिस्थिति बनेगी। सहनन संस्थान और फिर इसी प्रकार से स्वराधिक कहे सुभग दुर्भग। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो शरीर से सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको बहुत चाहते हैं, और कभी ऐसा होता है बहुत सुंदर है, और सुंदरता में तो वो ऐसा समझता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। पता है क्या कारण है उसके पीछे? नाम कर्म में एक सुभग और दुर्भग नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। सुभग नाम कर्म का उदय होता है तो लोग चाहते हैं, दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है तो दुर्भग ऐसे दूर भगाते हैं, कोई साथ में नहीं रखना चाहता है। ये ऐसे नाम कर्म के उदय, स्वर बतलाया सुभग दुर्भग। शुभ नाम कर्म सुंदर शरीर, अशुभ नाम कर्म बदसूरत शरीर, सुगंधित शरीर दुर्गंधित शरीर, यशस कीर्ति अपयश कीर्ति। ये नाम कर्म ऐसा, और देखो कर्मों की गणित बड़ी विचित्र है। एक बात और आपको मार्मिक यहाँ बतला दूं मैं, ऐसी मार्मिक है इनकी गणित कि आप यदि सुंदर होने की कामना रखते हैं, हाँ आप यदि कर्मों की गणित बतलाता हूँ क्या चलती है इनकी थ्योरी, आप यदि अत्यधिक मात्रा में ये भावना रखते हैं कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, तो आप समझ लीजिए अशुभ नाम कर्म बांध रहे हैं। क्या उल्टा बनता है? आप यदि ये सोचते हैं, ये भावना होती है कि मेरे साथ बहुत अच्छी आवाज हो मेरी, तो दुष्वर नाम कर्म बांध रहे हैं। कितना सावधान रहने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे, आप शरीर की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा दीजिए, बिल्कुल उपयोग मत लगाइए शरीर की तरफ, क्योंकि आप जो जो इसके लिए जैसा सोचेंगे वैसा विपरीत कर्म बनेगा। जैसे बहुत प्रसिद्ध बात है, आप यदि यशस कीर्ति चाहेंगे मान सम्मान चाहेंगे तो आपको अपमान मिलेगा। बहुत सारे लोग यश चाहते हैं, मुझे सम्मान मिले, मेरा नाम हो, लोग मेरी तारीफ करें। अरे तेरे इस यश चाहने की भावना से अपयश कीर्ति नाम कर्म बन रहा है। जब अपयश नाम कर्म का उदय आता है तो काम अच्छा करो लेकिन निंदा होती है, जब यशस कीर्ति कर्म का उदय आता है तो काम खराब भी हो रहे तो भी प्रशंसा होती है। क्या ऐसा होता है भाई, आपने काम किया बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अपयश कीर्ति कर्म का उदय था तो सामने वालों ने कहा कि नहीं नहीं इनका काम अच्छा नहीं है। अरे गई होगी, हमने बहुत अच्छा काम किया था, अपयश कीर्ति कर्म का उदय, हमने बहुत देखी है ऐसी स्थितियां। समझिए आप, एक बच्चे ने एग्जाम दिया और टॉप किया उसने, मेरिट में आया, बोलो प्रशंसा होगी कि नहीं उसकी। लेकिन आप ये कीर्ति कर्म का उदय हो तो लोग कहते हैं अरे क्या दम है, आजकल तो सबके ही आते हैं आजकल तो सभी 90% से ऊपर आते हैं। अब कोई बालक एग्जाम में फेल हो गया तो बोलो उसकी निंदा होगी या नहीं? कि हो सकता है उसके अपयश कीर्ति कर्म का उदय ना हो, तो फेल हो जाने पर भी आस पड़ोस वाले कहें पढ़ता तो बहुत था, इंटेलिजेंट तो बहुत था, इस कॉपियां कहां ढंग से जांचते हैं आजकल, फेल कर दिया इसको, है बहुत होशियार। देखो आप फेल होने पर भी निंदा नहीं हो रही है और वो टॉप करने पर भी प्रशंसा नहीं हो रही है, क्या कारण है उसके पीछे? यश कीर्ति और अपयश कीर्ति नाम कर्म, जैसा बांधा था उसके अनुसार काम होगा। कई बार आपने घरों में ऐसी बातें सुनी होगी, कह रहे हम तो कर करके मर जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत भी यश नहीं मिलता है हमारे को, हम कितना करते हैं लेकिन फिर भी यश नहीं है, दो शब्द हमारे लिए वो प्रशंसा के नहीं कहते, उनका कसूर नहीं है। तेरे यश कीर्ति का उदय होगा तो उनकी जवान से खूब प्रशंसा के वाक्य निकलेंगे, तेरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय होगा तो उनके मुख से निंदा रूप वचन दिखाई देंगे। कर्म अपना, उदय अपना, दूसरे को दोषारोपण देने का काम नहीं है। इस कर्म फिलॉसफी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात हम ये सीख रहे हैं विगत कई दिनों से कि किसी दूसरे के ऊपर कभी भी दोष नहीं देना।
लेकिन फिर भी वो जब भाषण देते हैं
बांध रहे हैं ना, क्यों नहीं बांध रहे? जो वो कोई वो खुदा हो गए क्या? संसारी तो हैं, उसमें क्या है? कर्म बांध रहे हैं बिल्कुल, वो कोई जन्म मरण से मुक्त थोड़ी ना हो गए, आखिर उनको भी कहीं तो जाना ही है ना। अरे संन्यास ले लिया तो क्या मरेंगे नहीं? तो मरेंगे तो किसी जन्म धारण नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बात समझाने की नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें, मतलब समझाने के लिए कह रहे हूँ वो बात अलग है, लेकिन किसी की यदि निंदा और आलोचना उनके माध्यम से की जा रही है तो पाप कर्म दे भी बांध रहे हैं, है ना। यदि किसी को समझाने का भाव आता है तो करुणा का भाव है, समझाने के भाव को करुणा कहते हैं और उस करुणा के भाव से शुभ कर्म बनता है, पुण्य कर्म बनता है, निंदा अपमान आदि के भाव से अशुभ कर्म का बंधन होता है। हम तो यहाँ यश कीर्ति और अपयश कीर्ति कर्म के बारे में बात कर रहे थे। चाहते सब प्रशंसाएं दुनिया में लेकिन बांधते उससे अपयश कीर्ति नाम कर्म है, तो इसलिए कभी अपनी प्रशंसा का भाव मत रखो, इसे श्रीमद जी ने मान कहा है। क्या फर्क है उसमें, क्या दम है? स्वाभिमान के नाम पर हम मान को ही रखना चाहते हैं, नाम स्वाभिमान का और रखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत तो अपना कुछ होना ही चाहिए। अब ये थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, तो क्या है ये चीज जो होना चाहिए? सब जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं समान है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन किसके माता पिता, कौन किसका पुत्र पुत्री, किसके साथ में किसके क्या संबंध है। मैंने वो 18 नातों की कथा सुनाई थी ना शायद, यहाँ की थी चर्चा, किसका क्या संबंध है, कौन किस भाव में जाकर के क्या बन जाएगा, कौन को कौन सी गति मिलेगी, क्या पता है? और क्या पता है ये नाम कर्म का कब कौन सा उदय आ जाएगा? उदय बदलते भी तो देर नहीं लगती, देखते देखते ही शरीर का परिणमन हो जाता है, पूर्व में कैसा बांधा था। आपको पता है सनत कुमार चक्रवर्ती की प्रशंसा की चर्चा देवगति में चलती थी, इतना सुंदर शरीर था उसका। 12 चक्रवर्तियों में एक सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हुए हैं, देवगति के जीव चर्चा करते थे, क्या सुंदरता है उसकी। चर्चा चलते चलते दो देव वहां से उतर करके आ गए देखने के लिए। जब देखने के लिए आए तो सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायाम कर रहे थे, नहाए नहीं थे, एक्सरसाइज करते थे, धूल मिट्टी में हो रहे थे, और दोनों देव वहां आकर के खड़े हुए, असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि गजब है, आपके रूप सौंदर्य की चर्चा देव गति में चलती थी, जैसा सुना था वैसा ही पाया, गजब सुंदरता है आपकी। तो पता है सनत क्या कहते हैं, अभी क्या देखते हो, अभी जब मैं नहा धोकर के बैठूंगा ना तैयार होकर के, वो चंदन आदि का लेप करके और इत्र आदि लगा करके मुकुट लगा करके रास्ती ठाट बाट तैयार होकर के जब सिंहासन पर आकर के बैठूंगा तब देखना, पौन घंटे बाद में आना आप और फिर देखना मेरी सुंदरता। और पौन घंटे बाद में आए, बूढ़ा सिंहासन पे बैठे हुए थे, पूछा क्यों आप कहो आप कैसा लगता हूँ, कि महाराज अब वो बात नहीं है। क्या अब वो बात नहीं है, क्या हो गया, वो सुंदरता अब नहीं है, अब वो बात नहीं है इस शरीर में, ये क्या हो गया, कि हमें अपने ज्ञान से हमें अपने दिव्य नेत्रों से आपके इस शरीर में कुष्ठ रोग के अंकुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोण होने वाला है शरीर में। और वैराग्य हो गया उनको, फिर बाद में उनको वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, बहुत लंबे समय तक शरीर में कोण रहा, इतना सुंदर शरीर कुष्ठ रोग में बदल जाता है, कोण हो जाता है। शक्ति का आप अभिमान में, बहुत ताकत है मेरे में, क्या ताकत की बात करता है, आज कितनी ताकत है तेरे शरीर में, इस ताकत को बदलते हुए देर नहीं लगेगी, तेरे कंट्रोल में नहीं है, नाम कर्म के कंट्रोल में है। चलती गाड़ी को तेज स्पीड से चलती गाड़ी को पकड़ करके पीछे से रोक लिया करता था गामा पहलवान, और अंत समय में जब वो मरा चेहरे पर रखी बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकता था, इतनी ताकत नहीं थी उसकी। बोलो आप क्या करें, हम कहाँ चलती है अपनी, कुछ भी तो नहीं चलती इस शरीर के ऊपर, कुछ भी तो हमारा कंट्रोल नहीं चलता है, हम इसको अपने हिसाब से परिणमाना चाहते हैं। शरीर ये कहता डोंट डिस्टर्ब, मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो, मेरे काम में परेशान मत करो आप, मैं जैसा जचेगा वैसा करूंगा। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा ऊपर से ये लगाऊं तो ये झुर्रियां चेहरे पर कम पड़े, लगे कम दिखे। तो नाम कर्मी ये कहता है कि कर ले तेरे जैसे जचती है, होना तो वही जैसा मैं चाहूंगा, शरीर का परिणमन तो वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा। एक एक पुद्गल परमाणु का परिणमन देह में जो व्याप्त है ना, एक एक परमाणु का परिणमन वो नाम कर्म के ऊपर बेस है। अब जिसका नाम कर्म बदले, जैसा बदलेगा वैसा शरीर हो जाएगा। कोई बहुत बदसूरत दिखते थे और बाद में देखो तो बहुत सुंदर हो जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखते थे थोड़े समय बाद में बदसूरत हो जाते हैं, किसने कर दिया। ये पूरी की पूरी चर्चा और प्रसंग हमारे को ये शिक्षा देता है कि शरीर की सुंदरता के लिए, शरीर की संभाल के लिए, शरीर की चिंता के लिए भक्ष्य अभक्ष्य आदि किसी भी पदार्थों का यदवा तदवा सेवन करना योग्य नहीं है। एक दूसरे प्रकार से यदि कहूं तो मैं कह सकता हूं ये नाम कर्म हमारे को शरीर की तरफ से 100% टेंशन फ्री करता है। तुम टेंशन मतलब मैं हूं ना, फिर आप बाल उड़ रहे हैं क्या करूं कोशिश करूं, तो नाम कर्म कहता है तुम टेंशन मतलब मैं हूं ना, तुम क्या हो तुम उड़ रहे हैं, हो होंगे क्या, जब तक रहने होंगे ना तब तक रहेंगे और उतने ही रहेंगे। एक समय मात्र के लिए भी उस बाल को लंबे समय तक टिकाया नहीं जा सकता, एक समय भी ज्यादा नहीं टिकाया जा सकता और एक समय भी उसको कम नहीं किया जा सकता। समय एक बड़े नहीं घटती, ऐसी स्वाधीनता है। ये स्वाधीनता समझ में आ जाए तो दृष्टि शरीर की तरफ क्यों रहे, दृष्टि स्वभाव सन्मुख जले बिना में रहे, इससे दृष्टि हटाओ अपने स्वरूप को देखो। ये कर्मों की चर्चा कर्मों को देखने के लिए नहीं है, ये कर्मों की चर्चा कर्मों की अधीनता के लिए नहीं है, ये कर्मों की चर्चा आत्मा की स्वाधीनता के लिए है। जब किसी काम को करने का विकल्प हमारे माथे पर होता है तो हम दिन रात उसमें लगे रहते हैं, हमें करना है हमें करना है, और जब वो जिम्मेदारी कोई दूसरा संभाल लेता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। आपको यहाँ का कैशियर बनाया गया, अब कैश आपको संभालना है सारा, यहाँ का कैश आपको मैनेज करना है, वो सब आपके माथे पे कितना वजन है। जब उस बात को संभालने वाला कोई दूसरा हुआ तो आपके सर से पूरा वजन उतर गया, अब नहीं है ना वजन, ऐसे ही हम कह रहे हैं कि शरीर की सारी जिम्मेदारी को संभालने वाला है एक जो दूसरा है, उसका नाम है नाम कर्म। पूरी की पूरी जिम्मेदारी, जब आप दांत हिलने लग गए तो टेंशन मत ले, वो है बैठा हुआ देखने वाला। कान दर्द करने लग गया तो तू इधर से उपयोग हटा, इस कान संबंधी व्यवस्था को देखने वाला नाम कर्म है। पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर वो सबका सब नामकरण के हिसाब से चलता है, इसलिए नामकरण कहता है दृष्टि हटाओ मत देखो शरीर की तरफ। नामकर्म हमारे को विश्वास दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी होना है सब निश्चित है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, अब मेरे ऊपर विश्वास रखना। कर्म इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि वो रंग के मात्र भी उसमें गड़बड़ी नहीं चलती है बिल्कुल भी, एक परमाणु इधर उधर नहीं होगा। नाखून जितना कटना है ना उतना ही कटेगा। आप हेयर ड्रेसर के यहाँ जाएं तो जितने बाल कम होने हैं, जितने बढ़ने हैं, जितने रहने हैं उतने ही रहेंगे, कोई किसी की उसमें कुछ नहीं चलती है। आप दांतों को कितना भी रगड़ने की कोशिश करो लेकिन जितनी उनकी व्हाइटनेस या येलोनेस है उतनी रहेगी, बदल ही नहीं सकते हैं उसमें। इसलिए शरीर से दृष्टि हटाओ और अपने को देखो। अपन कैसे हैं, अपना कैसा स्वरूप है, तो अपना है ना एक परिचय पढ़ा था मैंने अभी सुबह भी पढ़ करके सुनाया था मैंने, और महेंद्र भाई ने कहा कि एक बार और बतला देना अपना परिचय। ये है ना मेरे पास में एक उस पर मैसेज आया है, ये इसमें नीचे लास्ट में लिखा है दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल कोटा, उन्होंने वहां से उस चीज को रिलीज किया है। क्या है वो परिचय, कि नाम क्या है पता है आपको, क्या नाम है आपका, नाम पूछता हूं आप शरीर का बताएंगे। हमारा नाम क्या है, शुद्धात्मा, आत्मा है हम, मेरा नाम आत्मा है। कि रहते कहां हूं पता कहां है, कि भाई वैसे तो हम जो है चारों गतियों में मिलते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो स्थाई पता कौन सा है। बोले तो परमानेंट यदि आपको चाहिए तो परमानेंट एड्रेस तो मेरा मुक्तिपुरी है, जहां परमानेंट रहूंगा जाकर के। और यदि आप वर्तमान पता यदि पूछते हो, टेम्परेरी पता, तो ये वर्तमान टेम्परेरी पता है जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का आर्यखंड। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो आप, पैतृक आपका क्या रहा पीछे, पूरे वो तो निगोद से आए हैं सब, तो पैतृक क्या है, निगोद है। और पद कौन सा है वर्तमान में, वर्तमान पद क्या है, तो सिद्ध समान कारण परमात्मा, ये पद है। महत्वाकांक्षा सिद्ध दशा प्रकट करना, योग्यता सिद्ध समान अनंत गुण, क्वालिफिकेशन कार्य क्षेत्र, तो कहा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त, जो हमारा कार्य क्षेत्र है। क्षयोक्षम क्या है, कार्य क्षेत्र बतलाया निज आत्म प्रदेश, और काम क्या है कि जानना देखना। आदर्श कौन है कि देव शास्त्र गुरु, एक्स्ट्रा रिमार्केबल फैक्ट मेडिकल हिस्ट्री, अपना पूरा बायोडाटा बतला रहे हैं। रोग मिथ्यात्म मोह राग द्वेष, रोग का कारण परमे सुख बुद्धि, रोग का लक्षण आकुलता दुख भय वेदना, निदान स्वाध्याय आत्मचिंतन सत्संग, परामर्शदाता वीतरागी देवशास्त्र गुरु, ये अपना परिचय है। और एक बात और लिख दी इसमें, क्रिमिनल रिपोर्ट। तो वो क्या है, अपराध क्या है कि मिथ्या मान्यता, स्वयं की हिंसा, निज आत्मा का अनादर, परम एकत्व बुद्धि, ये सब अपराध है। तो यदि ये अपराध किया तो सजा भी कुछ है कि हाँ सजा भी है ना, चार गति रूपी जेल, ये सजा है। कि जज कौन थे, किसने सुनाया ये फैसला, बोले आठ कर्म, कर्मों ने सुनाया। इन लास्ट मैं अपने पूरे होशो आवास में, संकल्प है ये, क्या कहते हैं लास्ट में, मैं अपने पूरे होशो आवास में ये विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे ये समझ में अच्छी तरह आ गया है कि मेरी इस दुर्दशा का कारण मैं स्वयं ही हूँ, दूसरा कोई भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, और मैं स्वयं ही पथ्य का सेवन कर वह अपथ्य का निषेध कर अपनी भूल सुधार कर अपनी शक्तियों को प्रकट कर सकता हूँ, वह सिद्ध पद को सहज प्रकट कर सकता हूँ। इसमें मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान भी सिर्फ मार्ग ही बता सकते हैं, चलना तो मुझे स्वयं को ही पड़ेगा। अतः मैं अपनी भूल स्वीकारते हुए अपने को मोक्ष मार्ग में लगाने का दृढ़ संकल्प लेता हूँ। हाँ, वो महेंद्र भाई बनाने वाले हैं, बराबर। तो ये पता तो हो कि मैं हूँ कौन, आखिर हमें पता ही नहीं है, अपना परिचय ही नहीं पता। अभी आपसे पूछेगी आप कौन, कि मैं संजीव गोधा, फिर कहाँ के रहने वाले, बोले जयपुर के। ये सब धोखे में है, गलत एड्रेस बतलाता है, गलत पता बतलाता है, ये अपराध है, ये तो सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या सजा भुगतेगा कि चार गति की जेल, चारों गतियों की जेल में जाएगा, कभी नरक में कभी त्रियंत गति में। पता है मनुष्य गति में आया था तो ये सोच करके आया था, ये थोड़ा समझ गया है, सुधर गया है, अब यहाँ आएगा थोड़ा सत्संग करेगा, समागम करेगा, लेकिन यहाँ आकर के भी फिर वही धमाल मचाता है, कब क्या होगा बोलो, बड़ी जेल में डाल दिया जाएगा, जेल से कब छूटेगा। अरे जेल से तो वो छूटते हैं जो जेल में रह करके सुधर जाते हैं, समल जाते हैं, लेकिन जो जेल में रह करके भी वापस वही दंगा फसाद करते रहे हैं तो क्या होगा, बड़ी जेल में पहुंचाया, यहाँ इतने इसमें पार नहीं पड़ती, इसको तो चिरियंच में ले जाओ, वहां भी नहीं तो नरक में ले जाके पटको, इसको लगाओ इसके डंडे, तब इसको पता लगेगा, थोड़े दिन रहने दो इसको, वहां सागरों की आयु वहां भुगतता है, और फिर भुगतने के बाद में तब लगता है कि शायद कुछ सुधर गया होगा, अब इसको थोड़ा सा अपन भेज देते हैं मनुष्य आयु में। तो मनुष्य में आया, सत समागम फिर नहीं किया, फिर वही काम, अरे ये तो उसी के काबिल है, वापस निगोद में, कैसी हालत है। तो ये नाम कर्म से मिलता है अपने को शरीर, शरीर की व्यवस्थाएं नाम कर्म के ऊपर। नाम कर्म में ही एक प्रकृति और है जो इन सब से थोड़ी सी अलग हटके है, उस प्रकृति का नाम कहा है तीर्थंकर कर्म प्रकृति, उसे थोड़ा सा अलग कहा है, लेकिन है नाम कर्म, है तो कर्म ही है, तो बंधन रूप ही। कभी प्रसंग बनेगा तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बारे में स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करेंगे, स्पेशल पौन घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, तीर्थंकर कर्म प्रकृति क्या है, कैसे बंधती है, है कर्म, बंधन है, मुक्ति नहीं है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने के परिणाम अच्छे नहीं है, जो जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना चाहता है उन्हें तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी नहीं बनती। हमने कहा ना अभी, आप जैसे कर्म बांधना चाहते हो उससे उल्टा बनता है। तो इस तरह से ये नाम कर्म की बात हुई। अब लास्ट है गोत्र कर्म, उसका क्या स्वरूप है गोत्र कर्म का। गोत्र कर्म माने कुल, कैसे कुल में जन्म लेना, उच्च कुल की प्राप्ति या नीच कुल की प्राप्ति। हर व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेने की भावना बांधता है, सबकी भावना ये रहती है अच्छे कुल में जन्म लेते हैं हम, लेकिन भाई साहब काम तो नीच कुल जैसे कर रहे हो, काम क्या हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ आचार्य ने दो प्रकार से उसकी व्याख्या की, एक उच्च गोत्र कर्म और एक नीच गोत्र कर्म, और दोनों की चर्चा करते हुए बतला दिया कि परात्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुणों चालनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य। क्या कहा, नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारण क्या है, नीच गोत्र कर्म कैसे बनता है, पर आत्म, सूत्र बोल रहा हूं, पर आत्म निंदा प्रशंसा, परात्म निंदा प्रशंसा सत सद्गुणोच्चादनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य। अरे दूसरे की निंदा करने का परिणाम, अपने आप को ऊंचा दिखाने का परिणाम, अपने आप को श्रेष्ठ समझने का परिणाम, ये जो गर्व और घमंड का परिणाम है, ये नीच गोत्र कर्म के आश्रव का कारण बनता है। इस बात का अभिमान नहीं करना, क्योंकि किस बात का अभिमान कर रहे हैं आप, ये ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा थोड़ी ना। उच्च कुल में यदि आप आ गए हैं तो काम तो उच्च करो, दूसरों की निंदा करता रहता है, दूसरों का अपमान करता रहता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को हीन समझना इसकी फितरत में है। अपने आप को ही सब कुछ समझता है, दूसरों को तो घायर मूली समझता है, कुछ नहीं है दूसरे लोग, ऐसा कहते मेरे आगे वो क्या है, कुछ नहीं है वो मेरे आगे, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ रहे हो, नीच गोत्र कर्म मान रहे हो। दूसरे की बुराई हो गई ना, दूसरे के गुणों की प्रशंसा नहीं करना, दूसरों के दोष देखना वही बात है, और अपने दोष नहीं देखना और गुणों को बड़ा चढ़ा करके कहना, बिल्कुल दोनों तरफ लगाई जा सकती है ये बात। दूसरे के दोष देखता है, दूसरे के गुणों की प्रशंसा नहीं करता, दूसरे के गुणों की प्रशंसा नहीं सुहाती, अपने गुणों की प्रशंसा करता है, खुद ही आगे होकर के प्रशंसा करता है। कोई व्यक्ति समझ लीजिए आप एमए हो और कोई उसकी प्रशंसा करते हुए ग्रेजुएट कहे तो कैसा लगता है? नहीं 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 एमए क्या कहता है, एमए हूं मैं, देखो कैसा लगता है। माने हमारे को वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, कोई व्यक्ति डॉक्टर हो और उनको कंपाउंडर कहे, कोई कोई व्यक्ति समझ लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट का मजिस्ट्रेट है या वकील है, सुप्रीम कोर्ट का है, और हमने उसको कहा कि हाई कोर्ट के जज है ये, नहीं नहीं मैं तो, माने हमारे को वो चीज हम खुद बड़ा चढ़ा करके आगे बतलाना चाहते हैं। आप यदि अच्छी अवस्था चाहते हो भविष्य में तो सावधान रहें, क्योंकि आप यदि थोड़े बहुत भी असावधान रहते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं, तो ऐसा खोटा कर्म बांधते हैं। जो ज्यादा ऊपर रहने का प्रयास करता है उसको कुछ नहीं मिलता, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। जो अकड़ के रहते हैं ना, वे जड़ से उखड़ जाते हैं, बाहर तूफान चल रहा है थोड़ा सा, जो पेड़ अकड़ करके खड़े रहेंगे ना इस तूफान के काल में, वो जड़ से उखड़ जाएंगे, और जो आंधी और तूफान के काल में झुकना जानते हैं, आंधी तूफान चले जाने के बाद वापस खड़े हो जाते हैं। आप देख लीजिए, आपकी अकड़ आपको जड़ से उखाड़ देगी और आपकी सॉफ्टनेस वो आपको टिकाए रखेगी लंबे समय तक। पानी का घड़ा भरा था, उसके ऊपर एक प्लेट रखी थी, उस प्लेट ने बहुत सरलता से प्रश्न किया घड़े से, थोड़ा सा नाराजगी भरे शब्द से, और ये कहा कि अरे घड़े भैया मैं तुमसे थोड़ी नाराज हूं। घड़े ने पूछा क्या बात है भाई, तो प्लेट ने कहा कि क्या बात है, तुम सबको पानी पिलाते हो मुझे प्यासा रखते हो, क्या बात है सबको पानी पिलाते हो। तो घड़े ने क्या कहा कि देखो भाई, जो मेरे पास में आता है, चाहे प्याला हो चाहे गिलास हो चाहे और जार हो, जो कुछ भी हो, जो मेरे पास में आता है थोड़ा सा विनम्र होता है, झुकता है, वो जल से भर जाता है, तुम सदा मेरे माथे पे बैठी रहती हो इसलिए प्राप्त नहीं कर पाती। क्या जो माथे पे बैठ करके सीख कोशिश करेगा प्राप्त करने की, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राप्त करने का उपाय, प्राप्त करने का रास्ता वो सर पर बैठना नहीं है, सरल होना है, विनम्रता है। आप यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप यदि कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप विनम्र हो जाइए। ये गोत्र कर्म हमारे को विनम्र होना सिखा रहा है, सरल बनना सिखा रहा है, प्रशंसा करो दूसरे की। अरे वचने किम दरिद्रता, वचनों में दरिद्रता किस काम की, बोलने में आपका क्या बिगड़ रहा है? आपके अच्छे शब्द दूसरे के लिए औषधि का काम कर सकते हैं। ऐसा कहा है, वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आपके द्वारा जवान से निकले हुए शब्द औषधि का काम कर सकते हैं, उपचार का काम कर सकते हैं, और आपके जवान से निकले हुए शब्द दूसरे व्यक्ति के लिए घाव कर सकते हैं, और ऐसा घाव कर सकते हैं कि कहावत चलती है हमारे यहाँ, बोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का नहीं भरता। ऐसे घाव होते हैं, किसी को गोली मार दी महीने दो महीने में घाव भर जाएगा उसका, लेकिन जवान से जो मारे हैं शब्द हमने उनका क्या होगा, कैसे घाव लगते हैं लोग कहते हैं, भूल नहीं सकता मैं उन बातों को। 20 साल पहले उन्होंने जो बात मेरे को कही थी ना, आज भी पंडित जी मेरे कानों में वो बात गूंजती है, ऐसा कहते हैं लोग। वो क्या है, वो शब्द बाण है, शब्दों में प्रशंसा कीजिए, औरों की प्रशंसा कीजिए, जो प्रशंसा करता है वो प्रशंसा पाता है, जो सरल होता है वो लंबे समय तक रहता है, वो कायम रहता है, जो कठोर होता है वो लंबे समय तक नहीं रहता। जीभ है ना और दांत है, बोलो बच्चे दांतों के बीच में रहती है जीभ, झगड़ा हो गया एक बार, आए थे बाद में, जीभ तो जन्म से है, दांत तो साल डेढ़ साल बाद में आए, आए तो थोड़ी दादागिरी दिखाने लगे, बोलने लगे ये समझती क्या है, जब क्या है सब दबोच लेंगे, 32 है एक दो नहीं है, सावधान नहीं रही और कुछ भी यदि तूने कुछ गड़बड़ की तो दांत ये कहते हैं कि तुझे काट लेंगे, तो जीभ भी ये कहती है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो, एक ही शब्द ऐसे कहूंगी कि 32 तोड़वाओगे। मुझे कमजोर मत समझ लेना, क्या सरल हूं लचक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम चाहे जो मेरे ऊपर चलाने की कोशिश करोगे। दांत कठोर होते हैं, बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, क्या और जीभ इतनी सरल है कि जन्म से मरण तक रहती है। बोलो आप सोचिए अपने को कैसा बनना है, तो जो सरल होते हैं ताके घर बहु संपदा, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरल है ना, नहीं कर्म जैसा चढ़ाते वैसा बोलना थोड़ी ना, कर्म बुलवाते नहीं है आपसे, कर्म आपको जवान देंगे, आपकी वॉइस कैसी होगी डिपेंड्स ऑन कर्म, बट आप क्या बोलेंगे ये आपके पुरुषार्थ से निर्भर करता है, कर्म नहीं बुलवा रहे हैं आपसे, आप जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। हम ये कर्मों के बारे में कह करके किसी को गालियां दो और कहो कि मैं क्या करूं तेरे पाप कर्म का हो जाए, अरे वाह, तो फिर वो लगाएगा चाटा, वो पीटेगा और वो कहेगा भैया मुझे भी दोष मत देना, मेरे तो हाथ चल रहे हैं कर्म का हो जाए तेरा है, ये तो थोड़ी ना चलता है। स्वयं तो महंत बने रहना चाहे और दोष कर्माधिक पर लगाएं, ऐसी अनिति जिनमत विषय वहीं तो संभव है नहीं, जैन दर्शन में तो ऐसी अनिति संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ सब कुछ है, पुरुषार्थ से काम कैसे नहीं होगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, प्रेरणा पुरुषार्थ की दी जाती है, कर्म बिचारे कौन, ये जो कर्म है जितनी कर्मों की हमने यहाँ चर्चा की है उससे कहीं आप इतना मिसअंडरस्टैंडिंग मत ले लेना कि ये कर्म हमारे को बांधते हैं, कर्म हमारे को दुख देते हैं, कर्म हमारे को तकलीफ देते हैं, ये कर्म ही तो करने वाले हैं। ग्रंथाधिराज समय सार जी के अंदर कुछ गाथाएं इस प्रकार की दी गई सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, जिसमें उन्होंने लिखा कर्म करते हैं, कर्म रुलाते हैं, कर्म सुलाते हैं, कर्म दुखी करते हैं, कर्म पीड़ित करते हैं, कर्म हमारे को कभी नरक में ले जाते हैं, कर्म कभी हमारे को देवगति में ले जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं की। तो लास्ट में बहुत सारी चर्चा करने के बाद में एक वाक्य लिख दिया, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आप लोग क्या समझ रहे थे, सब खत्म, जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना ये कर्म के संदर्भ में अपनी, ये कर्म करने वाला है ये आप बहुत बड़े धोखे में है, कर्म कुछ नहीं करता है, परिस्थितियां जो हैं सो हैं, सुखी दुखी होना कर्म के अधीन नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज बहुत गजब की चीज जैन दर्शन में है। कर्मों की थ्योरी पूरी बतलाने के बावजूद भी, पूरी कर्म फिलॉसफी बतलाने के बावजूद भी लास्ट में ये कहते हैं कि तेरी कंट्रोलिंग पावर कर्म के पास में नहीं है, समझना आप, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, मुझे मालूम है कल सुबह मुझे यहाँ से उड़ना है आगे, इसलिए मैं इस सत्य से आपको अनभिज्ञ नहीं रखना चाहता। वो युगल जी बाबू जी की वो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है जो धूप के छंद में उन्होंने लिखी है देवशास्त्र गुरु पूजन में, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। बोलो, ये जड़ कर्म मेरे को घुमाता है, ये भ्रांति मिथ्या भ्रांति है। अपनी कंट्रोलिंग यदि कर्म के हाथ में दे दूंगा तो फिर मैं मुक्त कब होऊंगा? मुक्त कैसे होऊंगा मैं? फिर तो सब कुछ कर्म के ऊपर ही हो जाएगा ना। कि नहीं, कर्म के हाथ में नहीं है। कर्मों ने परिस्थितियां जरूर क्रिएट की, लेकिन उन्हें भी मैं सतर्क रहा, सावधान रहा, तो कर्मों की सामर्थ्य कुछ नहीं है। मैं कर्मों को नष्ट कर सकता हूँ। अरे कर्म इतने कमजोर हैं आत्मा के सामने, जिनको अभी तक आप बलवान समझ रहे थे पिछले कुछ दिनों से। आपको ऐसे लग रहा था पाप का उदय, अरे भैया संकट आ जाएगा, कर्म का उदय, कर्म करे क्या कर लेगा कर्म का उदय, कितने कर्म के उदय क्यों नहीं आ गए? लेकिन आत्मा के स्वभाव का अंश मात्र भी बिगाड़ नहीं सके। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश को भी इधर उधर नहीं कर सके। पाप कर्म का उदय आया तो नरक में जाकर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, कण कण बिखर गया शरीर के, ना आत्मा के अनंत गुणों में से कितने बिखर गए बताओ मेरे को? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी कम कर सका ये कर्म? आप क्यों डरते हैं कर्म से? हम कहते हैं मुक्ति मार्ग की तरफ तूफानी वेग से कदम तो बढ़ाओ। इन कर्मों की सामर्थ्य नहीं है जो आपको मोक्ष मार्ग में चलने से रोक सके। जो जीव तीव्र पुरुषार्थ से चलते हैं ना मुक्ति की तरफ, उन्हें कर्म रोकने में समर्थ नहीं होते। बहुत पावरफुल है हम। जिस व्यक्ति ने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना उसके ऊपर कर्म हावी हो जाते हैं, और जो अपनी शक्ति स्वभाव सामर्थ्य को पहचानते हैं कर्म उनको रास्ता दे देते हैं, मंद पड़ जाते हैं। औरों की क्या बात करूं, सुनने के लिए आए ना हम यहाँ। कर्मों में अंदर उथल पुथल चल रही है, मीटिंगें हो रही है वहाँ ये अंदर चला गया भाई साहब, क्या करें? आपस में फुसल फुसल हो रही है कि ये भाई साहब यदि इसने यदि सुन ली, ये वाणी यदि सुन ली इतने संतों की और इसके समझ में आ गई, इसके उतर गई, तो हमारा क्या होगा? ये हड़बड़ाहट उनके हृदय में चल रही है अंदर कर्मों के। ये जिनवाणी की बात कान में पड़ने मात्र से कर्मों में आकर्षण हो रहा है, कर्म झड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, पुंज के पुंज अभाव को प्राप्त हो रहे हैं, पाप कर्म पुण्य में संक्रमित हो रहे हैं, सब कैसे धड़ल्ले से अंदर में बदल रहे हैं अपने को पता नहीं है। हमारे इधर के परिणाम और उधर वो रिएक्शन अंदर में सब। आत्मा की ताकत है ऐसी, हमारे पास में इतनी सामर्थ्य है हम अभाव कर सकते हैं। कई लोग मिलते हैं ऐसा, वो ये कहते हैं अरे पंडित जी कर्म बहुत बलवान है भाई, आप मानो के ना कर्मों से डरना चाहिए अपने को, क्योंकि कर्मों की ताकत आपको पता नहीं है, आपको नहीं मालूम ऋषभ देव को भोजन नहीं मिला इतने दिनों तक, रोटी नहीं मिली, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर पत्थर बरसते रहे, क्या कर लेगा कोई आदमी कर्मों के आगे? पाप कर्म का उदय आएगा तो आपकी कुछ नहीं चलेगी, सब धरे रह जाएंगे, सब बैठे रह जाते हैं। पाप कर्म के आगे किसी की नहीं चलती है, जब उदय बलवान होता है तो हमारी नहीं चलती। सब पार्श्वनाथ को नहीं छोड़ा और ऋषभ देव को नहीं छोड़ा और उनका ऐसा नहीं किया और उनको पांडवों के ऊपर उपसर्ग और ये वो दुनिया भर की घटनाएं सुनाते हैं आप, क्या सुना रहे हो आप? इन सारी घटनाओं से ये फैसला सुना दिया आपने कि कर्म बलवान है। भाई साहब मैच चल रहा है, अभी मैच के बीच में फैसला नहीं सुनाते। ये क्रिकेट का मैच है, जब तक लास्ट तक नहीं देख लो तब तक डिसीजन मत दे देना कौन जीत गया और कौन हार गया। चल रहा है अभी, अभी कमट पत्थर बरसा रहा है, पाप कर्म का उदय अपना काम कर रहा है और पार्श्वनाथ स्वामी ध्यान में पुरुषार्थ से अपना काम कर रहे हैं। अभी कर्मों का और आत्मा का परस्पर में युद्ध चल रहा है। तुम कह रहे हो देखो कर्म कितने ताकतवर है और पत्थर बरसा रहे हैं, और हम कह रहे हैं 5 मिनट रुको अब देखना, फिर देखना कर्मों का क्या हुआ, फिर क्या हुआ था 5 मिनट बाद में झटके से सब गए कर्म। कौन बलवान है बताओ मेरे को? उस स्वभाव सामर्थ्य के आगे ये कर्म टिक नहीं सके, नहीं टिकते हैं वे कर्म। आत्मदर्शन हो जाए तब तो होता ही है, आत्मदर्शन हो जाने के बाद तो कर्म टिकेंगे ही नहीं। आत्मदर्शन करने के सन्मुख भी ये जीव हुआ और कर्म डरते, ये है स्थिति। आपको पता है कितने कर्म इस जीव को बांधते हैं प्रति समय? गुमसार की मैंने गहरी चर्चाएं नहीं की आप लोगों के सामने। समय प्रबद्ध कर्म बनते हैं, अनंत कर्म प्रति समय बनते हैं, इतना समझ लो आप। एट ए टाइम हर समय अनंत कर्म परमाणु बन रहे हैं आत्मा के साथ में, उदय भी उतने ही आते हैं लगभग, तो अनंत कर्म बांध रहे हैं जीव को। ये गोमत सार की चर्चाएं, ये कर्म कांड की चर्चाएं, ये कर्म फिलोसफी की चर्चाएं, ये कर्मों के गीत गाने के लिए नहीं है, अपितु कर्मों की हैसियत बतलाने के लिए है। आत्मा इतना बलवान है कि उसे बांधने के लिए एक कर्म नहीं अनंत कर्म चाहिए, तब जाकर के उसे बांध पाते हैं। बांध बंधन में नहीं आया आत्मा। कौन ज्यादा बलवान है? कोई एक ऑफिसर ऐसा जिसे मारने के लिए कोई मान लीजिए कोई दुश्मन लगे हैं और 10 गुंडे आ गए उसको मारने के लिए और फिर भी मार नहीं पाए, वो बच के निकल जाए, तो कौन ताकतवर? तो ऑफिसर ताकतवर है। और मान लीजिए 100 लोग उसको मारने के लिए आए और फिर भी वो उसमें बच करके निकल जाए, मार नहीं सके, तो कितना ताकतवर होगा? अब हम कह रहे हैं आत्मा को बांधने के लिए एक कर्म नहीं, 8 कर्म नहीं, 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां नहीं, बंधन योग्य 120 नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण कर्म, अनंत कर्म वर्गणाएं प्रति समय इस जीव को बांधने के लिए तैयार हो गए। और वो तो तब जब ये जीव सो रहा हो, तब जागृत हो जाए तो क्या होगा? तब तो बांध ही नहीं सकते। शेर सोया हो ना, शेर सो रहा हो और उसे पकड़ने के लिए कोई आए आसपास वाले, दो एक मिनट में खत्म करता हूँ, तो कोई आसपास वाले आए और उसको शेर को चार लोग घेर करके ऐसे जाल डालने के लिए आए हैं और वो शेर सोता सोता थोड़ा सा तेज खर्राटे भी देने लगे, डरते अब उठा नहीं है भी वो। यदि वो शेर जग जाएगा तब तो ताकत ही नहीं है किसी की पकड़ ले। अभी वो जागने के सन्मुख हुआ, थोड़ा सा करवट ली और थोड़ा सा ऐसे लगा कि उठ जाएगा, इतने में पकड़ने वाले डर के भागते। ये स्थिति है आत्मा और कर्मों की। ये आत्मा जागृत हो जाए तब तो कर्म बंध सकते ही नहीं है, और ये आत्मा जागृत नहीं भी हुआ और सत्संग के माध्यम से इसने थोड़ा बहुत जागृत होने का प्रयास किया तो उसमें भी कर्म हांफने लगते हैं, दूजने लगते हैं और छूटने लगते हैं। अरे कर्मों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये जिनवाणी की चर्चा कान में पड़ती है तो उस तरह से जैसे मयूर की आवाज सुनने मात्र से वो सर्प और अजगर की पकड़ ढीली हो जाती है। सुनी ना आपने चर्चा? शून्य तणे रस निबंध शिथिल थाये, जाने तणे हृदय ज्ञान कला जनाये। समझदार स्थिति में लिखा हिम्मत भाई ने। फिर को सुनने मात्र से सर्प और अजगर चंदन के वृक्षों के ऊपर लिपटे रहते हैं शीतलता प्राप्त करने के लिए। इस तरह लिपटे रहते हैं भाई साहब कि यदि उनको पकड़ के खींच के उतारना चाहो आप तो टुकड़े हो जाएं लेकिन उतरे नहीं, इतने जकड़ के पकड़े रहते हैं। लेकिन मयूर की आवाज मात्र सुनते हैं क्या और धड़ 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 नीचे गिर जाते हैं, ऐसे घबराते हैं। शत्रुता है उनमें, जन्म जात भैर है आपस में, खा जाता है मोर सर्प को। आवाज सुनने मात्र से ढीले पड़ जाते हैं। बस ठीक इसी तरह से जिनवाणी की बात कान में पड़ने मात्र से ये कर्मों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अपने स्वभाव को पहचाने, अपनी सामर्थ्य को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने हम क्या। अपनी ताकत को यदि पहचानेंगे तो एक कर्म कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। जब तक आत्मा बलवान है तब तक कर्म कमजोर है, और जब आत्मा कमजोर है तो कर्म बलवान है। इसलिए सावधान रहो, परिणामों को संभालो, सत्संग के माध्यम से कर्मों को कमजोर करते रहो। और जब ये कर्म कमजोर हो जाए तो एक क्षण ऐसा आएगा टूट भी जाएंगे। आप सभी अपने स्वभाव सामर्थ्य के माध्यम से अपनी आत्मा को जान करके, अपनी आत्मा का स्वभाव यायक स्वभाव यह है, अनंत गुण संपदा जो अंदर में मौजूद है उसे जानकर इन कर्मों के अभाव करने की तरफ कदम बढ़ाएं। कर्मों से डरे नहीं, कर्मों से घबराए नहीं, कर्म से ज्यादा बलवान मैं हूँ ऐसी अपनी सामर्थ्य को पहचान कर उनका अभाव करें और शीघ्र अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें, शाश्वत सुख की प्राप्ति करें, परमानेंट सुख की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात करें। हाँ क्यों नहीं, किसने कहा आप ऑर्डिनरी हैं? अभी तो मैंने बताई ये बात आपको कि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप लाखों में एक हैं। 25 لاکھ میں سے آپ نکل کر کے یہاں آئے ہیں سننے کے لیے، آپ اپنے آپ کو سادھارن سمجھتے ہیں، یہ گڑبڑی ہے. آپ اپنے آپ کو ہین سمجھتے ہیں، یہ دھوکہ ہے. آپ پرماتما سے کم نہیں ہیں، آپ بھگوان ہیں. ہوں پرماتما کیوں؟ ایم نکی تو کر، نکی کر، ایسا نرنے کرو کہ میں پرماتما ہوں. جو ویکتی ایسا نرنے کرتا ہے پھر اسے اپرادھ نہیں ہوتا، پھر اسے پاپ نہیں ہوتا، پھر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے پاتا، پھر وہ مایا چاری نہیں کر سکتا، چھل کپٹ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی چیز ہے اپنے آپ کو پرماتما سمجھنا. دریہ درشٹی سے پرماتما ہوں اور اس سوبھاؤ کو سمجھ کر اس کی شردھا پوروک پریائے میں بھی پرماتما بن سکتا ہوں.
پھر سے آئے اور ہم کو جگائے، ایسی ہم بھاونا رکھتے ہیں.
لیکن جب تک نہیں آؤں تب تک جاگتے رہے ہیں. اور وہ جگانے کا کام مہندر بھائی کرتے ہیں پچھلے یہاں جین سینٹر میں، تین تین بار آتے ہیں سپتاہ میں، تین بار چار بار. آپ لوگ لابھ لے رہے ہیں، یعنی اپنے جیون کو سفل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت بھاگیہ سے یہ سمادھان مل گیا ہے. سچ میں مہندر بھائی ہیں، تو جتنا لابھ لے سکو اتنا لے لو. آپ سماگم کریں گے تو آپ کا کلیان ہوگا، اور تھوڑا سا نہیں لے پائے لابھ تو یہ تو اپنے کلیان کے لیے آتے ہیں. ان کا تو کچھ جانے والا ہے نہیں، ان کا تو